एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो हमारी दुनिया को लगभग अदृश्य धागों से बुनता है, पर जिसका असर बहुत गहरा है। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन।
सही कहा, और हमारी इस बातचीत का आधार है मैथ्यू रेनॉल्ड्स की अनुवाद पर लिखी गई किताबें और उनके विचार।
हाँ, खास तौर पर उनकी ट्रांसलेशन अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
जी, और ट्रांसलेशन अ क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीनिंग जैसी रचनाओं से निकले मुख्य सिद्धांत, इन पर आज हम चर्चा करेंगे।
अब शायद कुछ लोग सोचे, अनुवाद इसमें इतनी क्या खास बात है, लेकिन जरा रुकिए और सोचिए।
हाँ,
कितनी सारी विश्व प्रसिद्ध किताबें हैं, फिल्में हैं, यहाँ तक कि रोज की खबरें भी हम तक कैसे पहुँचती हैं?
अनुवाद के जरिए ही।
बिल्कुल, अनुवाद के जरिए। पर क्या ये सिर्फ मतलब एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में बदल देना है? क्या ये इतना सीधा है?
यही पर मैथ्यू रेनॉल्ड्स का नजरिया काफी दिलचस्प हो जाता है। वो इस आम समझ को क्या कहते हैं, चुनौती देते हैं।
अच्छा, कैसे?
उनका कहना है कि अनुवाद कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से शब्द डालो और दूसरी तरफ से अनुवाद तैयार।
हाँ, जैसे कोई मशीन हो।
बिल्कुल, बल्कि ये एक रचनात्मक काम है, व्याख्या करने वाला काम है, एक तरह की कला है जो ना सिर्फ साहित्य और संस्कृति बल्कि हमारी आपसी बातचीत की समझ को भी जड़ से बदल सकती है।
तो आज हम इसी रचनात्मक शक्ति को समझने की कोशिश करने वाले हैं।
हाँ, यही मिशन है आज का।
तो इस सफर को शुरू करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि हमारे गाइड मैथ्यू रेनॉल्ड्स हैं कौन आखिर।
जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी और तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर हैं। अकादमिक जगत में मतलब काफी सम्मान है इनका।
हाँ, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो शायद ये है कि ये सिर्फ किताबी बातें करने वाले प्रोफेसर नहीं है।
बिल्कुल सही, ये खुद एक प्रैक्टिसिंग ट्रांसलेटर हैं, मतलब अनुवाद करते हैं।
अच्छा।
हाँ, इन्होंने इतालवी, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं से अंग्रेजी में कई अहम लेखकों का अनुवाद किया है। गैब्रियल डी अनुंजियो का नाम सुना होगा।
हाँ हाँ,
और ग्यूसेप तोमासी दी लेम्पेडुसा, इनके काम का अनुवाद किया है इन्होंने।
अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि उन्हें दोनों दुनियाओं का अनुभव है, थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल चुनौतियों का भी।
एग्जैक्टली, किताबी ज्ञान और जमीनी हकीकत, इन दोनों के बीच एक पुल की तरह है वो अनुवाद को सिर्फ शब्दों का हेर फेर नहीं मानते,
बल्कि
एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ताकत मानते हैं।
ये दिलचस्प नजरिया है।
बिल्कुल, और यही अनुभव उनके लेखन को एक अनूठा दृष्टिकोण देता है। वो सिर्फ भाषा की शुद्धता या ग्रामर के नियमों में ही नहीं फंसे रहते।
तो फिर किस चीज में रुचि है उनके?
करता क्या है, कैसे ये संस्कृतियों को मिलाता है या बदलता है, कैसे ये इतिहास का रुख मोड़ सकता है, और हाँ, कैसे ये हमारी अपनी पहचान को गढ़ता है।
मतलब उनका नजरिया सिर्फ अकादमिक नहीं बल्कि काफी मानवीय भी है।
बहुत मानवीय है।
चलिए अब रेनॉल्ड्स के मुख्य विचारों की ओर बढ़ते हैं। उनकी किताबें अनुवाद के बारे में हमारी सोच को बदलने का एक मजबूत प्रयास है।
हाँ,
उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे क्या कहूँ क्रांतिकारी तर्क ये है कि अनुवाद का मकसद कभी भी मूल टेक्स्ट की हूबहू नकल तैयार करना हो ही नहीं सकता।
हो नहीं सकता और नहीं होना चाहिए।
हाँ, और नहीं होना चाहिए।
ये बात थोड़ी चौंका सकती है ना?
हाँ, क्योंकि हम अक्सर यही सोचते हैं कि अच्छा अनुवाद मतलब ओरिजिनल जैसा।
बिल्कुल,
लेकिन रेनॉल्ड्स कहते हैं कि अनुवाद कोई स्थिर चीज नहीं है, ये गतिशील इंसानी गतिविधि है।
गतिशील मतलब इसे आप भाषाओं, संस्कृतियों और समय के बीच एक यात्रा की तरह समझ सकते हैं। और जैसे किसी भी यात्रा में कुछ सामान छूटता है, कुछ नया जुड़ता है, कुछ बदल जाता है।
हाँ, होता है ऐसा।
वैसे ही अनुवाद की इस यात्रा में भी विचार, कहानी, भावनाएं, सब कुछ अनिवार्य रूप से बदल जाता है। रेनॉल्ड्स इसी बदलाव को रचनात्मक परिवर्तन यानी क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं।
तो वो इस धारणा को खारिज करते हैं कि अनुवाद मूल की कोई कमजोर फीकी सी परछाई है।
जी हाँ, बल्कि वो इसे एक जरूरी जीवन देने वाली शक्ति मानते हैं।
जीवन देने वाली शक्ति, वाह।
एक ऐसी शक्ति जो विचारों और साहित्य को सिर्फ जिंदा नहीं रखती बल्कि उन्हें नए संदर्भों में ढालकर विकसित करती है, उन्हें एक तरह से नया जीवन देती है।
तो उनका लक्ष्य पाठकों को इन आसान सवालों से आगे ले जाना है कि भाई सबसे अच्छा अनुवाद कौन सा है, या ये वफादार है या आजाद।
बिल्कुल, रेनॉल्ड्स दिखाते हैं कि हर अनुवाद अपने आप में एक व्याख्या है, एक इंटरप्रिटेशन। ये एक खास सांस्कृतिक और ऐतिहासिक माहौल में रचा जाता है और अनुवादक इसमें अनगिनत रचनात्मक चुनाव करता है। कौन सा शब्द ठीक रहेगा, कैसी लय होनी चाहिए, कैसा टोन हो।
तो हर अनुवाद एक नया संस्करण हुआ, एक नई पेशकश।
एग्जैक्टली, हर अनुवाद अपने आप में नया है।
रेनॉल्ड्स अपनी बात एक बेहद दिलचस्प विचार से शुरू करते हैं जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। वो कहते हैं, हम सब अनुवादक हैं
रोजमर्रा की जिंदगी में।
हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में।
ये सुनने में अजीब लग सकता है शायद, लेकिन जरा सोचिए।
हाँ,
जब हम अपने मन में चल रहे विचारों को शब्दों का रूप देते हैं तो क्या वो एक तरह का अनुवाद नहीं है?
हाँ, कह सकते हैं।
या जब हम किसी दोस्त की बात सुनकर उसका मतलब समझते हैं तो क्या वो अनुवाद नहीं?
किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाना,
या किसी फिल्म की कहानी का सार बताना,
अपनी ही भाषा के पुराने कवियों को समझना जैसे कबीर या सूरदास को आज के संदर्भ में।
बिल्कुल, ये सब अनुवाद के ही तो रूप हैं।
हाँ, इस नजरिए से देखें तो अनुवाद कोई दूर की सिर्फ एक्सपर्ट्स की चीज नहीं रह जाती।
नहीं, ये तो हमारे संवाद करने, समझने और समझाने के तरीके का हिस्सा है।
पर यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है जो अनुवाद की दुनिया में सदियों से बहस का मुद्दा रहा है।
कौन सा?
कि क्या अनुवाद को मूल के प्रति वफादार होना चाहिए या उसे नई भाषा में एकदम सहज लगना चाहिए?
हाँ, फेथफुल बनाम फ्लुएंट वाली बहस। रेनॉल्ड्स कहते हैं कि ये सवाल ही अपने आप में एक जाल है, एक झूठा द्वंद है।
झूठा द्वंद मतलब?
इसे समझने के लिए वो बाइबल के अनुवादों का बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। सेंट जेरोम के 4वीं शताब्दी के लैटिन अनुवाद से लेकर किंग जेम्स वर्जन और आज के अनगिनत आधुनिक अनुवादों तक का इतिहास देखिए। हर अनुवादक को मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं, किसके प्रति वफादार रहें, मूल हिब्रू या ग्रीक शब्दों के शाब्दिक अर्थ के प्रति, वाक्य की मूल संरचना के प्रति,
कविता की लय या ध्वनि के प्रति,
हाँ, या मूल लेखक के माने गए इरादे के प्रति, या फिर उस असर के प्रति जो अनुवाद को नए पाठकों पर डालना है।
जाहिर है, सब कुछ एक साथ साधना तो लगभग नामुमकिन है।
नामुमकिन, एक पहलू पर जोर देंगे तो दूसरा शायद थोड़ा पीछे छूट जाएगा। यहीं पर वो अवधारणाएं काम आती हैं, फॉरेनाइजेशन,
यानी अनुवाद में जानबूझकर थोड़ा अजनबीपन बनाए रखना।
हाँ, ताकि पाठक को लगे कि ये बाहर से आया टेक्स्ट है। और दूसरी तरफ डोमेस्टिकेशन,
यानी अनुवाद को इतना सहज बना देना कि वो लगे ही नहीं कि अनुवाद है, मानो अपनी ही भाषा में लिखा गया हो।
रेनॉल्ड्स का मानना है कि हर अनुवाद इन दोनों ध्रुवों के बीच कहीं ठहरता है, और ये चुनाव ही अनुवाद की व्याख्यात्मक प्रकृति को दिखाता है।
और यहीं पर रेनॉल्ड्स का वो मशहूर विचार आता है ना, कि हर अनुवाद एक रचनात्मक विश्वासघात है।
और हर रचनात्मक विश्वासघात प्रेम का एक रूप है।
मतलब मूल से थोड़ा हटना, उसे बदलना जरूरी है, लेकिन एक अच्छा अनुवादक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे मूल रचना से गहरा लगाव और सम्मान है।
बिल्कुल, ये विश्वासघात को नेगेटिव नहीं बल्कि रचनात्मक और जरूरी बता रहा है।
वाह, ये तो अनुवाद को देखने का बिल्कुल नया नजरिया है। और इसी से जुड़ा है उनका अगला बड़ा विचार कि अनुवाद खुद एक रचनात्मक लेखन है,
एक कला है।
हाँ, एक कला।
बिल्कुल, वो अनुवादकों को मूल लेखक का सिर्फ नौकर या नकलची नहीं मानते।
तो क्या मानते हैं?
उन्हें अपने आप में लेखक या कहें तो सहलेखक का दर्जा देते हैं।
सहलेखक?
हाँ, क्योंकि अनुवादक सिर्फ शब्दों को नहीं बदलते, वो पूरी दुनिया रचते हैं। उन्हें लहजा, लय, सांस्कृतिक बारीकियां, पात्रों की आवाज, हर स्तर पर रचनात्मक फैसले लेने होते हैं।
तो हर अनुवाद अनुवादक की अपनी समझ, उसकी व्याख्या और उसकी कलात्मक छाप लिए होता है।
जी,
इससे वो अनुवाद खुद एक अनूठी साहित्यिक कृति बन जाता है।
जैसे कोई संगीतकार किसी पुरानी धुन को अपने अंदाज में पेश करता है,
या कोई निर्देशक किसी क्लासिक नाटक को आज के समय के हिसाब से मंच पर लाता है।
हाँ, धुन वही है, नाटक वही है, पर पेशकश नई और अनूठी होती है। रेनॉल्ड्स कहते हैं कि अनुवादक भी कुछ ऐसा ही है, वो मूल का सेवक नहीं बल्कि
समय और स्थान के पार उसका सहयोगी है।
बिल्कुल, ये अनुवादक को एक अधीनता से निकालकर बराबरी का दर्जा देता है।
अब बात करते हैं इतिहास और शक्ति संबंधों की। आपने कहा था अनुवाद का इस पर भी असर रहा है।
हाँ, अनुवाद सिर्फ साहित्य की दुनिया तक सीमित नहीं है, इसका इतिहास और राजनीति पर भी गहरा असर रहा है। रेनॉल्ड्स दिखाते हैं कि अनुवाद ने साहित्यिक इतिहास को कैसे गढ़ा है।
इसका कोई उदाहरण?
एक क्लासिक उदाहरण है एडवर्ड फिट्ज़जेरल्ड का उमर खय्याम की रुबाइयात का अंग्रेजी अनुवाद।
ओ हाँ, वो तो बहुत मशहूर है।
हैरत की बात है कि आज ये अनुवाद मूल फारसी रुबाइयों से कहीं ज्यादा मशहूर है।
सच में?
हाँ, ये इस बात का सबूत है कि एक रचनात्मक अनुवाद मूल से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है और एक पूरी तरह नई साहित्यिक परंपरा को जन्म दे सकता है।
हमारे यहाँ भी देखें तो पंचतंत्र की कहानियों का अरबी और फिर यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ
और पूरी दुनिया में फैल गया। ये भी अनुवाद की ही शक्ति दिखाता है।
लेकिन आपने कहा था इसका एक स्याह पहलू भी है।
हाँ बिल्कुल, अनुवाद हमेशा शक्ति संबंधों के ताने बाने में बुना होता है, खासकर उपनिवेशवाद के दौर में। अनुवाद अक्सर शासन का एक औजार बन गया। शासकों ने अपने कानूनों, आदेशों, धार्मिक ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करवाया, लेकिन इस प्रक्रिया में अक्सर अपनी अवधारणाओं और मूल्यों को थोपा गया।
स्थानीय संस्कृतियों की बारीकियों को नजरअंदाज किया गया।
हाँ, इसका एक बेहद दुखद और विवादास्पद उदाहरण न्यूजीलैंड की वैतांगी संधि है, ट्रीटी ऑफ वैतांगी, 1840 में हुई थी
ब्रिटिश क्राउन और वहां के माओरी प्रमुखों के बीच।
जी, इस संधि के अंग्रेजी और माओरी संस्करणों में संप्रभुता, सॉवरेनिटी और शासन, गवर्नेंस जैसे शब्दों के अनुवाद में जमीन आसमान का फर्क था।
ओ, क्या फर्क था?
अंग्रेजी संस्करण के हिसाब से माओरी प्रमुखों ने अपनी पूरी संप्रभुता अंग्रेजों को सौंप दी, जबकि माओरी संस्करण का अर्थ था कि उन्होंने सिर्फ शासन करने का अधिकार दिया है, अपनी सत्ता या स्वायत्तता नहीं छोड़ी।
अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है।
बहुत बड़ा, और इस अनुवाद के अंतर ने बाद में सदियों के संघर्ष, जमीन विवाद और अन्याय को जन्म दिया।
ये घटना दिखाती है कि अनुवाद कितना संवेदनशील और शक्तिशाली हो सकता है
और अनुवादक की नैतिक जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। अनुवाद सांस्कृतिक हेरफेर का जरिया भी बन सकता है।
लेकिन इसका उल्टा भी सच है।
हाँ, अनुवाद प्रतिरोध का, अपनी संस्कृति और आवाज को दुनिया तक पहुँचाने का माध्यम भी बन सकता है, जब हाशिए पर खड़ी संस्कृतियां इसका इस्तेमाल करती हैं।
अब आते हैं पहचान और भाषा के गहरे रिश्ते पर।
हाँ।
जो लोग दो या ज्यादा भाषाएं बोलते हैं,
हाँ,
वो तो एक तरह से लगातार अनुवाद की स्थिति में जीते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, और वे अलग अलग सांस्कृतिक नजरियों और सोचने के तरीकों के बीच आवाजाही करते रहते हैं। ये अपने आप में एक जीता जागता अनुवाद है।
और कुछ लेखक तो खुद अपनी रचनाओं का अनुवाद करते हैं, जैसे सैमुअल बेकेट का जिक्र किया था आपने।
हाँ, बेकेट ने अपनी कई रचनाएं पहले फ्रेंच में लिखी और फिर खुद ही उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया। रेनॉल्ड्स दिखाते हैं कि बेकेट के लिए ये सिर्फ भाषा बदलना नहीं था।
तो क्या था?
ये उनकी कलात्मक पहचान को गढ़ने का, अपने लेखन में एक खास किस्म की दूरी और सटीकता लाने का तरीका था।
और उन शब्दों का क्या जिनका अनुवाद करना बेहद मुश्किल लगता है, जिन्हें अक्सर अनट्रांसलेटेबल कह दिया जाता है?
जैसे पुर्तगाली शब्द सौदादे, किसी चीज या व्यक्ति की गहरी मीठी सी उदासी भरी याद।
या जर्मन शब्द शादेनफ्रॉइडे, दूसरों के दुर्भाग्य पर मन ही मन होने वाली खुशी।
हाँ, रेनॉल्ड्स कहते हैं कि भले ही एक सटीक शब्द ना मिले, पर उस एहसास को, उस विचार को समझाया जा सकता है, उसके इर्द गिर्द शब्दों का ताना वाना बुना जा सकता है। ये अनुवाद की हार नहीं बल्कि उसका सबसे दिलचस्प पहलू है।
अच्छा, कैसे?
ये हमें दिखाता है कि दूसरी भाषा और संस्कृति दुनिया को कैसे देखती है, उनके पास भावनाओं और अनुभवों को समझने के कैसे अनूठे तरीके हैं जो शायद हमारी भाषा में सीधे सीधे मौजूद ना हो।
तो इन शब्दों से जूझना हमें दूसरी संस्कृतियों के विश्व दृष्टिकोण की झलक देता है।
बिल्कुल।
अब एक और बड़ा विचार जो क्लासिक्स के बारे में हमारी समझ बदल सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई किताब क्लासिक इसलिए बनती है क्योंकि मूल रचना ही महान होती है।
हाँ, यही आम धारणा है।
लेकिन रेनॉल्ड्स एक अलग तर्क देते हैं।
क्या?
कि कोई रचना क्लासिक इसलिए बनती है और बनी रहती है क्योंकि उसका लगातार अनुवाद होता रहता है।
अच्छा,
ये तो बिल्कुल उल्टी बात है,
है ना? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है होमर की ओडिसी।
हाँ बिल्कुल,
सदियों से इसका अंग्रेजी और दुनिया के दूसरी भाषाओं में अनगिनत बार अनुवाद हुआ है। जॉर्ज चैपमैन के 17वीं सदी के अनुवाद से लेकर अलेक्जेंडर पोप के 18वीं सदी के काव्यात्मक अनुवाद और हाल ही में एमिली विल्सन के समकालीन अनुवाद तक। हर अनुवाद अपने समय, अपनी भाषा और अपनी साहित्यिक समझ का प्रतिबिंब है। ये अनुवाद सिर्फ नकले नहीं है
बल्कि होमर की कहानी की नई प्रस्तुतियां हैं, नई व्याख्याएं हैं।
एग्जैक्टली
सही बात है। यही निरंतर अनुवाद उस मूल पाठ को जिंदा रखता है, उसे हर नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाता है,
वरना वो मूल शायद किसी पुरानी भूली हुई भाषा में बंद एक म्यूजियम की चीज बनकर रह जाता।
अनुवाद उसे एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर ले जाता है और इसी यात्रा से वो क्लासिक बनता है।
बिल्कुल।
बेशक अनुवाद में कुछ खास चुनौतियां भी हैं, जैसे कविता का अनुवाद करना।
हाँ, वो तो सबसे मुश्किल माना जाता है। यहाँ सिर्फ अर्थ का सवाल नहीं है, लय, तुकबंदी, ध्वनि, अलंकार, सांस्कृतिक संकेत, इन सबको साधना होता है।
या अक्सर सबसे ज्यादा रचनात्मकता की जरूरत पड़ती होगी।
हाँ, या कहें कि रेनॉल्ड्स के शब्दों में रचनात्मक विश्वासघात की जरूरत पड़ती है, ताकि नई भाषा में भी वो काव्यात्मक असर पैदा हो सके।
हाँ, और गद्यों में भी चुनौतियां कम नहीं, जैसे उपन्यास या कहानियों में।
सांस्कृतिक संदर्भों को समझाना, हास्य के अंदाज को पकड़ना,
या कहानी सुनाने वाले की खास आवाज को नई भाषा में उतारना।
हाँ, ये सब बड़ी चुनौती है। अनुवादक की ये चुनाव तय करते हैं कि पाठक उस विदेशी संस्कृति या लेखक को कैसे समझेगा। ये एक तरह की सांस्कृतिक मध्यस्थता है।
और आज की दुनिया में अनुवाद का बाजार भी तो एक हकीकत है।
बिल्कुल, कौन सी किताबें चुनी जाती हैं, किन भाषाओं से ज्यादा अनुवाद होता है, कौन से अनुवादकों को काम मिलता है, इन सब में प्रकाशन जगत की इकोनॉमी और कभी कभी पॉलिटिक्स भी भूमिका निभाती है।
और अब तो मशीन ट्रांसलेशन भी है मैदान में।
हाँ, गूगल ट्रांसलेट जैसे उपकरण, वो अपनी सहूलियतें और अपनी चुनौतियां लेकर आए हैं, लेकिन रेनॉल्ड्स याद दिलाते हैं कि अंततः
सर्वश्रेष्ठ अनुवाद हमेशा अपने आप में मौलिक साहित्यिक कृतियां भी होते हैं।
जी,
उन्हें सिर्फ मूल से तुलना करके नहीं, बल्कि उनके अपने कलात्मक गुणों के लिए भी सराहा जाना चाहिए।
तो इन सभी गहरी बातों का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या मतलब निकलता है? हम इन विचारों से क्या सीख सकते हैं?
सबसे पहली बात तो यह है कि इससे अनुवादित साहित्य पढ़ने का हमारा नजरिया बदल सकता है।
कैसे?
अब हम किसी विदेशी लेखक की किताब पढ़ते हुए सिर्फ कहानी पर ही ध्यान नहीं देंगे, बल्कि ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा, अनुवादक ने कैसे रचनात्मक चुनाव किए होंगे।
हम अनुवाद को एक कला की तरह सराह सकते हैं।
बिल्कुल, और ये भी दिलचस्प हो सकता है कि कभी मौका मिले तो एक ही किताब के अलग अलग अनुवादों को देखें।
जैसे गीता के कई अंग्रेजी अनुवाद हैं।
हाँ, या शेक्सपियर के हिंदी अनुवाद। उनकी तुलना करने से पता चलता है कि अनुवादक के छोटे छोटे फैसले भी हमारे पढ़ने के अनुभव को कितना बदल देते हैं।
ये हमें वैश्विक साहित्य की समृद्धि और अनुवादकों के श्रम का एहसास कराता है। हाँ, और जो लोग नई भाषा सीख रहे हैं उनके लिए भी ये सोच उपयोगी है।
अच्छा,
अनुवाद सिर्फ शब्द रटना नहीं है, बल्कि दूसरी संस्कृति को गहराई से समझना, संदर्भ को पकड़ना और रचनात्मक तरीके से समस्याओं का हल निकालना है।
और शायद सबसे बड़ा सबक हमारे आपसी संचार के लिए है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ये समझें कि हमारी हर बातचीत, चाहे वो दफ्तर में हो या घर पर, एक तरह का अनुवाद ही है।
अपने विचारों को शब्दों में ढालना
और फिर उन शब्दों को सामने वाले की समझ तक पहुंचाना,
तो हम शायद ज्यादा ध्यान से अपनी बात कहेंगे और दूसरों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे।
हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो रहा। इससे शायद रोजमर्रा की गलत फहमियां कुछ कम हो सके।
हाँ, ये तो बहुत काम की बात है, खासकर आज के डिजिटल युग में जहाँ मशीन ट्रांसलेशन इतना आम हो गया है।
रेनॉल्ड्स के विचार हमें याद दिलाते हैं कि मानवीय समझ, रचनात्मकता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और नैतिक जिम्मेदारी का कोई शॉर्टकट नहीं है।
तकनीक मददगार हो सकती है, पर अनुवाद की कला और उसकी आत्मा,
वो इंसान से ही जुड़ी है।
तो आपके लिए सबसे अहम बात क्या रही इस पूरी चर्चा में?
मेरे लिए जो सबसे अहम बात उभर कर आई वो ये है कि अनुवाद की असंभवता, मतलब मूल की हूबहू नकल न कर पाने की जो सीमा है, वही असल में उसकी खूबसूरती और ताकत है।
ये विरोधाभासी लगता है।
हाँ, लेकिन ये हमें सिखाता है कि सीमाओं को स्वीकार करके भी रचनात्मक समाधान खोजे जा सकते हैं। ये उस सोच को चुनौती देता है कि हर चीज का एक ही सही या परफेक्ट रूप होता है। ये विविधता, व्याख्या और मानवीय रचनात्मकता का जश्न मनाता है। और सबसे बढ़कर ये अनुवादक को एक गुमनाम तकनीशियन की बजाय एक कलाकार, एक सहयोगी का दर्जा देता है।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला एहसास रेनॉल्ड्स का ये अवलोकन था कि हम एक अनुदित दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम दिखावा करते हैं कि ऐसा नहीं है।
हाँ, ये बहुत गहरा अवलोकन है।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास कितना कुछ ऐसा है जिसे हम अपना या मूल मानते हैं, पर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अनुवाद या सांस्कृतिक आदान प्रदान का नतीजा है। हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारे विचार,
सब कुछ एक मिली जुली अनुदित दुनिया का हिस्सा है।
बिल्कुल, तो कुल मिलाकर मैथ्यू रेनॉल्ड्स हमें अनुवाद को एक सूखी तकनीकी कसरत की तरह देखने के बजाय
एक जिंदा, सांस लेती हुई, रचनात्मक और सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण कला के रूप में देखने की दावत देते हैं।
सही कहा, और ये समझ हमें न सिर्फ बेहतर पाठक बनाती है, बल्कि शायद अधिक जागरूक और विचारशील वैश्विक नागरिक भी बनाती है,
जो भाषाओं और संस्कृतियों के बीच बने पुलों की अहमियत और उनकी नाजुकता को समझते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।